एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत है।
मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है आजकल की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि सब तरफ बस तनाव है, चिंता है और मन कहीं टिकता ही नहीं।
हाँ बिल्कुल, और शायद इसीलिए डेविड फोंटाना की किताब डिस्कवर ज़ेन इतनी रेलेवेंट लगती है आज। तो आज हम इसी किताब के बारे में थोड़ी गहरी बातचीत करेंगे।
अच्छा,
ये किताब ना ज़ेन को कोई बहुत मुश्किल या रहस्यमयी चीज नहीं बताती, बल्कि ये बताती है कि कैसे हम अपनी रोज की जिंदगी में इसे अपनाकर थोड़ी शांति, थोड़ी क्लैरिटी पा सकते हैं।
हाँ, मतलब सिर्फ मेडिटेशन या आश्रमों की बात नहीं है ये समझने की कोशिश है कि अपने मन को थोड़ा बेहतर समझ लें तो शायद ज्यादा आराम से जी पाएं।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं लेखक से। ये डेविड फोंटाना थे कौन?
हाँ बताइए।
डेविड फोंटाना 1934 में जन्मे और 2010 में गुजरे। वो एक जाने माने ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, अकादमिक थे और लेखक थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कोई ज़ेन मास्टर या मॉन्क नहीं थे,
अच्छा,
वो साइकोलॉजिस्ट थे।
हाँ,
साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिखी जो दुनिया भर की करीब 25 भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी के फेलो भी थे और कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी थे।
तो यही बात शायद उनके नज़रिए को ख़ास बनाती है ना, कि एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट पूरब की एक आध्यात्मिक परंपरा को देख रहा है, समझ रहा है।
बिल्कुल, फोंटाना एक तरह से पुल का काम करते हैं। वो ज़ेन के जो गहरे और कभी कभी लगता है कि भाई ये क्या विरोधाभासी बातें हैं, उनको वो हमारे जैसे मॉडर्न लॉजिकल सोचने वाले दिमाग के लिए आसान बनाते हैं। साइकोलॉजी में उनकी जो एक्सपर्टीज थी उससे उन्हें अनात्मन, मतलब के कोई परमानेंट सेल्फ नहीं होता, या फिर माइंडफुलनेस यानी सजगता, इन आइडियाज को आज की साइकोलॉजिकल समझ से जोड़ने में मदद मिली।
तो ये किताब मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ जैसी नहीं लगती होगी फिर, ज्यादा प्रैक्टिकल लगती होगी, मन के विज्ञान जैसी।
हाँ, कुछ हद तक वैसा ही। इसमें आपको अकादमिक गहराई भी मिलेगी और एक सच्ची आध्यात्मिक खोज भी दिखेगी, और यही कॉम्बिनेशन इसे भरोसेमंद भी बनाता है और पढ़ने में आसान भी। मतलब ज़ेन को लेकर जो एक डर या रहस्य का पर्दा होता ना, ये किताब उसे हटा देती है।
अच्छा, तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में, इसका मतलब मेन आइडिया क्या है?
देखिए, डिस्कवर ज़ेन जो है वो ज़ेन बुद्धिज्म के इतिहास, उसके दर्शन और सबसे जरूरी उसकी प्रैक्टिस का एक बहुत ही सरल इंट्रोडक्शन है। ये उन लोगों के लिए है जो ज़ेन के बारे में जानना तो चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहां से करें।
हाँ, कई बार ऐसा होता है।
ये कोई बहुत भारी भरकम अकादमिक किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है, तनाव कम करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, या बस मन में थोड़ी शांति पाने के लिए।
और ये आज के किस बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, मतलब आजकल की जिंदगी से कैसे जुड़ती है?
ये सीधे सीधे हमारी आज की जिंदगी की जो उलझने हैं ना, जैसे अकेलापन महसूस होना, चिंता होना, मन का भटकते रहना, उन्हीं को एड्रेस करती है। हम सब पे इन्फॉर्मेशन का कितना बोझ है, एम्बिशन के पीछे भाग रहे हैं और ज्यादातर टाइम या तो गुजरे कल के पछतावे में या आने वाले कल की फिक्र में खोए रहते हैं। तो किताब यही सवाल उठाती है कि इस सारे शोर शराबे से हटकर लाइफ को असलियत में यहीं और अभी कैसे जिया जाए।
और इसका जवाब फिर ज़ेन में है?
हाँ, फोंटाना के अनुसार जवाब ज़ेन की प्रैक्टिस में है। माइंडफुलनेस, ज़ाज़ेन यानी बैठकर ध्यान करना और अपने देखने के नज़रिए में बदलाव लाना।
अच्छा,
वो बताते हैं कि कैसे हम अपने ईगो, अपने अहंकार के उस भ्रम को तोड़ सकते हैं जो हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है, और कैसे हम रियलिटी की जो गहरी सादगी है, जो इंटरकनेक्टेडनेस है, उसको महसूस कर सकते हैं।
तो किताब हमें किस तरह की जर्नी पर ले जाती है, क्या है उसमें?
ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। पहले तो ये ज़ेन की जड़ों तक जाती है, गौतम बुद्ध से शुरू करके फिर बोधि धर्म जिन्होंने इसे चीन पहुंचाया, और फिर जापान के महान गुरु जैसे डोगेन और हाकुइन तक।
ओके, मतलब इतिहास भी है।
हाँ है, इतिहास है। फिर ये ज़ेन की जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे अद्वैत यानी सब कुछ एक है, शून्यता यानी चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी ठोस और स्थायी नहीं है, और ये जो एक अलग मैं होने का भ्रम है, इन सबको बहुत सरल भाषा में समझाती है।
और सबसे ज़रूरी हिस्सा आपने कहा अभ्यास।
बिल्कुल, प्रैक्टिस पर बहुत जोर है। फोंटाना ज़ाज़ेन यानी बैठकर ध्यान करने के लिए बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं, आसन कैसा हो, सांस पर ध्यान कैसे दें। साथ ही कोएन पर भी बात करते हैं, वो जो पहेलियां होती हैं ज़ेन में, और ये भी बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस कैसे लाएं। तो निचोड़ यह है कि ज़ेन सिर्फ मेडिटेशन मैट तक सीमित नहीं है, ये जीने का एक तरीका है जिसे कहीं भी कभी भी अपनाया जा सकता है।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो अभ्यास है, उनको थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, उत्पत्ति से?
हाँ, किताब ज़ेन की जड़ों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ती है, खासकर दुख और उससे निकलने के रास्ते से। फिर जिक्र आता है बोधि धर्म का, जो करीब 5वीं-6वीं सदी में भारत से चीन गए।
अच्छा, हाँ,
चीन में बौद्ध धर्म का मिलाप हुआ ताओवाद से और वहां बना चान। चान में किताबी ज्ञान से ज्यादा डायरेक्ट एक्सपीरियंस और मेडिटेशन पर जोर था।
और फिर ये चान जापान पहुंचा।
हाँ, और जापान में ये ज़ेन कहलाया। वहां इसकी दो मुख्य शाखाएं बनी, सोटो और रिन्ज़ाई। सोटो ज़ेन, जिसे डोगेन ज़ेनजी ने स्थापित किया, वो शिकांता ज़ा पर जोर देती है, जिसका मतलब है बस बैठना। मतलब
अभ्यास ही ज्ञान है, कुछ अलग से हासिल नहीं कर रहे, बस पूरी सजगता से बैठना है। इसे धीरे धीरे ज्ञान पाने का रास्ता भी कहते हैं।
ओके, और रिन्ज़ाई?
रिन्ज़ाई ज़ेन, जिसे हाकुई नेकाकू जैसे गुरुओं ने पॉपुलर किया, वो थोड़ी ज्यादा इंटेंस मानी जाती है। इसमें ज़ा ज़ेन के साथ कुआन का इस्तेमाल होता है।
हाँ, वो पहेलियां?
हाँ, ये ऐसी पहेलियां हैं जो हमारे लॉजिकल दिमाग को एकदम थका देती हैं, ताकि हम उस लॉजिक से परे जाकर सीधे अनुभव कर सकें। इसका मकसद होता है अचानक से एक इनसाइट आना, जिसे केंशो या सतोरी कहते हैं।
इतिहास तो ठीक है, लेकिन जो असल बात है वो शायद इसके दर्शन और अभ्यास में है। तो ज़ेन के मूल विचार क्या हैं जिन्हें समझना जरूरी है?
हाँ, कुछ बहुत ही गहरे लेकिन है बड़े सरल विचार। पहला है अद्वैत यानी नॉन ड्यूअलिटी। ये कहता है कि मैं और दूसरा, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो भेद हम करते हैं, वो असल में हमारे मन की बनाई हुई चीज है। सब कुछ एक ही है, एक ही बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर शायद इसे रोज महसूस करना मुश्किल होता होगा। और एक शब्द आता है शून्यता या एम्प्टीनेस, इसका क्या मतलब है? क्या सब कुछ खाली है?
नहीं, खालीपन नहीं। शून्यता का मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से, स्थायी रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है और लगातार बदल रही है।
अच्छा, जैसे?
कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए ये मेज, ये लकड़ी से बनी है, लकड़ी पेड़ से आई, पेड़ जमीन पानी धूप से बना, कीले हैं, बनाने वाला है। तो मेज अपने आप में क्या है? वो इन सब चीजों के जुड़ने से बनी एक अथस्थायी रचना है। उसका अपना कोई फिक्स्ड इंडिपेंडेंट मेज पना नहीं है। यही शून्यता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और बदल रहा है।
ओके, समझी। मतलब चीजें अपने आप में ठोस और परमानेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। और इसी से जुड़ा है वो अनात्मन या नो सेल्फ का विचार, कि कोई स्थायी मैं नहीं है।
हाँ बिल्कुल, जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में क्या है? वो बस विचारों, भावनाओं, यादों, शरीर की संवेदनाओं का एक लगातार बदलता हुआ कलेक्शन है। कोई एक फिक्स्ड ना बदलने वाला आत्मा या सेल्फ जैसी चीज नहीं है। ज़ेन कहता है कि ये जो एक काल्पनिक सॉलिड मैं हमने पकड़ रखा है ना, इसी से चिपके रहना हमारे ज्यादातर दुख का कारण है। इस पकड़ को छोड़ना ही वही मुक्ति है।
ये विचार तो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं, और शायद इन्हें सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ज़ेन ये मेरे में थोड़ा और बताइए, कैसे करते हैं इसे?
ज़ेन मतलब बैठकर ध्यान करना, ये ज़ेन का एकदम सेंट्रल प्रैक्टिस है। फोंगटाना आसन यानी पोस्चर पर काफी जोर देते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे पर शरीर में तनाव ना हो।
अच्छा,
आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आधे पद्मासन में, या सिंपल आलती पालती मारकर, या फिर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। जरूरी है कि आप स्थिर और आरामदायक हों। फिर ध्यान अपनी सांस पर लाना होता है।
सांस पर? कैसे?
बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करना, उसे कंट्रोल नहीं करना, बदलना नहीं, बस जैसा है वैसा जानना। कई लोग शुरू में मन टिकाने के लिए सांसें गिनते भी हैं, जैसे 1 से 10 तक, फिर वापस 1 से।
लेकिन मन तो भटकेगा ही,
विचार तो आएंगे ही,
उसे कैसे रोके?
रोकना नहीं है, यही तो ज़ेन की खूबी है। फोंटेना कहते हैं कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें बस आने जाने देना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, आप आकाश हैं, विचार बादल हैं।
अच्छा, तो बस देखना है?
हाँ, बस देखना है, बिना किसी जजमेंट के, बिना उनसे उलझे। और जब पता चले कि मन भटक गया है, जो कि भटकेगा ही, तो बहुत नरमी से, बिना खुद को कोसे, ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आना है। लक्ष्य दिमाग को खाली करना नहीं है, बल्कि दिमाग जो लगातार बकबक करता रहता है ना, उसका गुलाम बनने के बजाय उसका साक्षी बनना।
ये सुनने में ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और वो कोआन, वो जो पहेलियां थीं जैसे एक हाथ की ताली की आवाज क्या है, या तुम्हारे माँ बाप के पैदा होने से पहले तुम्हारा असली चेहरा क्या था, इनका क्या पॉइंट है?
कोआन लॉजिक से सॉल्व करने के लिए नहीं है, वो दरअसल हमारे लॉजिकल एनालिटिकल दिमाग को शॉर्ट सर्किट करने के लिए है।
शॉर्ट सर्किट?
हाँ, मतलब उसको इतना थका देना कि वो हार मान ले, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब शब्दों या तर्क में नहीं है। इनका मकसद होता है प्रैक्टिशनर को द्वैतवादी सोच, ये या वो सही या गलत, से बाहर निकालकर एक गहरे सीधे अनुभव की तरफ धकेलना। ये रिंजाई ट्रेडिशन में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ेन सिर्फ शांति से बैठकर ध्यान करना ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं, असली ज़ेन तो आपकी मेडिटेशन कुशन से उतरकर आपकी पूरी जिंदगी में फैल जाता है। इसे कहते हैं रोजमर्रा के जीवन में सचेतनता या माइंडफुलनेस।
अच्छा, मतलब
जो जागरूकता, जो प्रेजेंस आप ध्यान में प्रैक्टिस करते हैं, उसे अपने हर काम में लाना। चाहे आप खाना खा रहे हों तो बस खाना खा रहे हों, हर निवाले के स्वाद, उसकी गंध पर ध्यान दें। बर्तन धो रहे हों तो बस बर्तन धो रहे हों, पानी की आवाज़, साबुन की फील। किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह वही हों, सिर्फ सुन रहे हों।
किताब में शायद कुछ ज़ेन आर्ट्स का भी जिक्र है, जैसे वो फूलों को सजाना या कैलीग्राफी।
हाँ, शोडो, कैलीग्राफी, इकेबाना, फूल सजाना, चाडो, चाय समारोह, ये सब ज़ेन के इसी सिद्धांत को दिखाते हैं। इनमें क्या जरूरी है? सादगी, ध्यान और उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। संदेश ये है कि कोई भी काम कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसे पूरी सजगता और पूरे दिल से किया जाए तो वो एक मेडिटेशन बन सकता है, जागृति का रास्ता बन सकता है। ये रोजमर्रा के कामों को भी एक तरह से पवित्र बना देता है।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? क्या है इसके कोर मैसेजेस?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ज़ेन कोई विश्वासों का सेट नहीं है जिसे अपनाना है, ये असलियत का सीधा पर्सनल अनुभव है।
हाँ।
किताबें, गुरु, ये सब बस इशारे हैं, जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा करती है, पर उंगली चांद नहीं है, अनुभव तो खुद ही करना पड़ेगा।
सही कहा। और दूसरा बड़ा संदेश मुझे लगता है ये मैं या अहंकार का भ्रम। हम जो अपने आप को एक अलग फिक्स्ड मैं समझते हैं ना, ज्यादातर दुख और टकराव की जड़ वही है। ज़ेन प्रैक्टिस इस भ्रम को धीरे धीरे कमजोर करती है।
बिल्कुल। और तीसरा, वर्तमान क्षण की शक्ति। लाइफ न तो पास्ट में जी जा सकती है न फ्यूचर में, वो सिर्फ अभी में है, इसी पल में। हमारा मन भागता रहता है आगे पीछे और हम असल जिंदगी को मिस कर देते हैं। ज़ेन हमें बार बार इसी अभी में वापस खींच लाता है।
और चौथा कि सजगता या माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन के टाइम की चीज नहीं है, ये जीने का तरीका है। हर काम में, हर पल में पूरी तरह उपस्थित होना, ये साधारण को भी खास बना देता है।
हाँ, और एक चीज और, सादगी और स्वाभाविकता। ज़ेन की खूबसूरती उसकी सादगी में है। ये सिखाता है कि ज्ञान कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हासिल करना नहीं है, बल्कि अपनी जो असली सरल सहज प्रकृति है उसमें वापस लौटना है।
किताब में जरूर कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो एकदम से क्लिक करते हैं, याद रह जाते हैं। सीधे कोट्स ना सही, पर वो आइडियाज।
हाँ, कई ऐसे आइडियाज हैं, जैसे एक ये कि ज़ेन अपनाने के लिए आपको किसी नई चीज में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये तो वास्तविकता का सीधा अनुभव है। इसका सच बताया नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। वो उंगली जो चांद दिखा रही है, वो खुद चांद नहीं है। मतलब शब्दों और सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी है खुद का अनुभव।
और ध्यान के बारे में ये बात मुझे बहुत राहत देती है। ध्यान का लक्ष्य विचारों को रोकना या दिमाग को एकदम खाली कर देना नहीं है। लक्ष्य है मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखना, बिना उसके साथ बहे। आप आसमान की तरह हैं और विचार आते जाते बादलों की तरह। ये खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो शुरू में सोचते हैं कि ध्यान में विचार आने ही नहीं चाहिए।
हाँ, बिल्कुल। और एक और पावरफुल आइडिया, आपकी जो सच्ची प्रकृति है वो कुछ ऐसी नहीं है जिसे आपको बनाना या हासिल करना है, वो तो पहले से ही मौजूद है। ज़ेन अभ्यास तो बस उन परतों को हटाने की प्रक्रिया है जो उसे ढके हुए हैं, जैसे आपकी आदतें, आपका अहंकार, आपके मन का शोर। ये बहुत उम्मीद देता है कि हमें कुछ बनना नहीं है, बस जो है उसे पहचानना है।
और शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आइडिया ये है, ज्ञान या इनलाइटनमेंट को किसी बहुत बड़े भविष्य के पल में मत ढूंढो। उसे अपने बर्तन धोते हुए या जूते के फीते बांधते हुए या बारिश की आवाज सुनते हुए, उस काम में पूरी तरह पूरे दिल से मौजूद रहने में पाओ। हर साधारण से काम में भी पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। ये दिखाता है कि ज़ेन हमारी रोजमर्रा की ग्राउंडेड लाइफ से जुड़ा है।
बिल्कुल, ये सारे विचार दिखाते हैं कि ज़ेन सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है। तो अब जरा इस पर बात करते हैं कि इसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके रियल लाइफ फायदे क्या हो सकते हैं।
सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो है तनाव और चिंता में कमी। ज़ेन हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से थोड़े अलग होकर उन्हें देख सकते हैं। जब हम चिंता वाले विचारों को बस आता जाता देखना सीखते हैं तो वो हम पर हावी नहीं हो पाते। सोचिए, ऑफिस की किसी टेंशन वाली मीटिंग से पहले या ट्रैफिक जाम में फंसे हुए बस कुछ पल अपनी सांस पर ध्यान देना कितना फर्क डाल सकता है।
हाँ, ये बात तो है। और दूसरा, फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होता है। आजकल ध्यान भटकना तो जैसे आम बात हो गई है। ज़ेन एक तरह से हमारे ध्यान वाले मसल की ट्रेनिंग है।
अच्छा, ध्यान का मसल।
हाँ, मतलब जैसे जिम में मसल बनाते हैं, बार बार मन को खींचकर वापस सांस पर लाना, ये हमारी एकाग्रता की क्षमता को मजबूत करता है। और ये बेहतर फोकस फिर काम में, पढ़ाई में, हर जगह काम आता है।
और रिश्तों में भी शायद सुधार आता है। जब हम अपने ईगो को थोड़ा कम महत्व देना सीखते हैं तो शायद हम दूसरों को ज्यादा खुले मन से सुन पाते हैं, ज्यादा हमदर्दी रख पाते हैं।
बिल्कुल, जब हम खुद को डिफेंड करने में कम लगे होते हैं तो हम ज्यादा गहराई से कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरों के फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर को शायद उनकी परेशानी के तौर पर देख पाते हैं, गुस्से की जगह करुणा से रिएक्ट कर पाते हैं।
और ये रोजमर्रा के कामों को भी मीनिंगफुल बना सकता है।
हाँ, सचेतनता से जब हम काम करते हैं तो उबाऊ काम भी उबाऊ नहीं लगते। बर्तन धोना, कपड़े तय करना, सफर करना, ये सब प्रेजेंस और प्रैक्टिस के मौके बन सकते हैं। लाइफ में एक तरह का संतोष मिलता है जो बाहरी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करता।
निर्णय लेने में भी मदद मिल सकती है शायद।
हाँ, क्योंकि ज़ेन एक साफ, शांत और बिना उलझन वाला मन बनाने में मदद करता है। वो बिगनर्स माइंड वाली बात, चीजों को बिना पुराने आइडियाज और बायस के देखना। जब मन शांत होता है तो हम सिचुएशन को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं और शायद ज्यादा सही और इंट्यूटिव फैसले ले पाते हैं।
और एक और चीज, मुश्किलों का सामना करने की ताकत यानी रेजिलियंस।
हाँ, क्योंकि ज़ेन अनित्यता का सिद्धांत सिखाता है कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हम इस सच्चाई को दिल से मान लेते हैं तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं करते। न तो सफलता सिर पर चढ़ती है, न असफलता हमें तोड़ पाती है। एक ठहराव सा आ जाता है।
तो कुल मिला के इस किताब से क्या सबसे बड़ा सबक मिलता है? आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि असली आज़ादी, असली शांति बाहर की सिचुएशन बदलने से नहीं मिलती, वो मिलती है अपने मन के साथ अपना रिश्ता बदलने से। प्रॉब्लम दुनिया में उतनी नहीं है जितनी हमारे देखने के तरीके में है, हमारे अहंकार के उस फिल्टर में है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और ज़ेन उस फिल्टर को साफ करने का, रियलिटी को ज्यादा क्लियरली देखने का एक बहुत सीधा, डायरेक्ट तरीका देता है। ये बताता है कि जागरूकता कोई बहुत दूर का सपना नहीं है, वो इसी पल में मुमकिन है सबके लिए।
और मेरे लिए ये किताब वाकई एक बेहतरीन पुल की तरह काम करती है साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बीच, पूरब और पश्चिम के बीच। ये ज़ेन जैसे गहरे विषय को डरावना या बहुत मुश्किल बनाने की बजाय उसे एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल बना देती है।
सही कहा।
ये हमें एक तरह से एम्पावर करती है। ये भरोसा दिलाती है कि शांति और खुशी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमारे पास पहले से ही है। हमें कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं। वो जो पवित्रता है वो हमारे इसी साधारण रोजमर्रा के जीवन में ही बुनी हुई है। बस उसे देखने की, जीने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।